के सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसका 28, 29 और 30 पद पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका
19वां अध्याय
28-29।
यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या लड़के वालों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुतेरे जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो पहले होंगे।
प्रभु, पवित्र आत्मा, सारा नियंत्रण हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, जो आप हमें सिखाना चाहते हैं आप हमें सिखाएं। प्रभु,
यीशु के नाम से
तेरा राज्य बढ़े और तेरी इच्छा पूरी हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बहुत सारी चीजों को हर एक विश्वासी को समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ऐसी बहुत सारी बातें आज हम परमेश्वर के वचन से देखना चाहते हैं जो हम सबके लिए समझना बहुत जरूरी है। जैसे अभी पास्टर रोनी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा, कर्नल अलंका मणि साहब हमेशा कहते हैं समझना है। यर्मिया की पुस्तक में लिखा है ना, 9वें अध्याय के 23-25 में शायद, कि न वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, न धनी अपने धन पर, परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है और
समझता है।
हालेलुया,
हालेलुया।
बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को जानते हैं, परंतु कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को समझते हैं। हमें परमेश्वर को समझना है। परमेश्वर जो है वो सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो किसी भी तरह से दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी नहीं ठहराता है। हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। वो विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। अगर आप निकालें निर्गमन की पुस्तक उसका 34वां अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 34वां अध्याय निकालेंगे, छठे पद से पढ़िए।
और यहोवा उनके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी।
यहोवा दयालु है और
अनुग्रहकारी,
अनुग्रहकारी है,
कोप करने में धीरजवंत
है
और अति करुणामय
परमेश्वर है
और सत्य
परमेश्वर है।
हजारों पीढ़ियों तक निरंतर
लगातार करुणा करने वाला हमारा परमेश्वर है।
अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है।
अधर्म को भी क्षमा करता है, अपराध को भी
और पाप को भी क्षमा,
इनिक्विटीज को भी, ट्रांसग्रेशंस को भी और सिन को भी, सबको वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। परंतु
दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा।
दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। ये चीज हमको समझनी है आज। हालेलुया,
हालेलुया।
बहुत से लोग इस बात का प्रचार करते हैं और ये सही भी है कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है, परमेश्वर हमारे अधर्म को क्षमा करता है, परमेश्वर हमारे अपराध को क्षमा करता है, परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करता है ना। वो हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया,
हालेलुया।
लेकिन यहां पर इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए, परंतु, पर सब बोलिए परंतु,
परंतु,
परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष
नहीं।
अगर वो दोषी को भी निर्दोष ठहरा दे तो फिर न्याय पूरा कैसे हुआ। हम तो कहते हैं कि परमेश्वर सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो है वो सही न्याय करने वाला परमेश्वर है। देखिए मैं आपको एक चीज आज बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हम सबको सिखाना चाहता है कि जब भी आप बाइबल को पढ़ें तब इस बात को ध्यान से देखें कहां पर अनंत जीवन लिखा हुआ है, कहां पर परमेश्वर का राज्य लिखा हुआ है, कहां पर स्वर्ग का राज्य लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग अनंत जीवन को ही परमेश्वर का राज्य समझते हैं। हालेलुया,
हालेलुया।
क्या यहां पर सभी लोग ऐसे बैठे हैं जो ऐसा ही समझते हैं? परंतु अनंत जीवन से पहले प्रभु ने कुछ रखा है। हालेलुया,
हालेलुया।
लोग समझते हैं कि केवल एक ही बार न्याय का सिंहासन लगेगा और एक ही बार न्याय होगा, परंतु आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि न्याय 7 बार होगा। कितनी बार होगा?
7 बार
न्याय होगा। लोग सोचते हैं न्याय का सिंहासन लगेगा, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वो अनंत जीवन को पालेगा, स्वर्ग चला जाएगा। जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता वो अनंत आग में, नरक में तड़पने के लिए जाएगा। ऐसे ही मानते ना सब लोग? हम भी बहुत लंबे समय तक ऐसा ही मानते थे, परंतु परमेश्वर ने वचन से सिखाया फाइनल डेस्टिनेशन हेवन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3:16 हम सभी जानते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु
अनंत जीवन पाए।
क्या पाए?
अनंत जीवन।
अनंत जीवन पाए। एक स्टेटमेंट को लिख लीजिए, विश्वास से अनंत जीवन मिलता है लेकिन प्रेम से 1000 वर्ष का शासन मिलता है। अगर आप केवल विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के ऊपर आपने विश्वास कर लिया है कि यीशु तो मेरा प्रभु है, मैं हृदय से विश्वास करता हूं और अपने मुंह से अंगीकार करता हूं कि यीशु तो मेरे लिए इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया और मरे हुए से 3rd दिन जी उठा, यीशु तो मेरा प्रभु है। लिखा है ना रोमियो की पत्री 10:9 में कि यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अपने हृदय से विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया, तो तू निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। तू निश्चय उद्धार पाएगा, तो अनंत जीवन को पाएगा। परंतु जो न्याय है वो एक बार नहीं होगा, वो 7 बार होगा। कितनी बार होगा?
7 बार।
7 बार न्याय होगा। देखिए इस चीज को आज हमें समझना है, इस चीज को आज हमें जानना है, क्योंकि हमारे लिए समझना बहुत
जरूरी है।
जरूरी है। क्या करना है हमको?
समझना है।
क्या करना है?
समझना है।
देखिए सबसे पहला जो न्याय है ना, सबसे पहला जो न्याय है वो इस वक्त चल रहा है। जो व्यक्ति प्रभु में सोता है, यीशु मसीह के ऊपर उसने विश्वास किया और वो प्रभु में सो गया, तो वो व्यक्ति जैसे ही प्रभु में सो जाएगा कहां पर चला जाएगा? स्वर्ग लोक में चला जाएगा, स्वर्ग में नहीं जाएगा। इस चीज को समझिए। देखिए पृथ्वी, सब लोग मेरे हाथ की तरफ देखिए, ये पृथ्वी है जहां पर हम रह रहे हैं, इसके ऊपर स्वर्ग लोक है, उसके ऊपर स्वर्ग है। ये पृथ्वी है, इसके नीचे अधोलोक है, अधोलोक के नीचे नरक है। ठीक है, 5 जगह हो गई ना, पृथ्वी हो गई, उसके ऊपर क्या है?
स्वर्ग
लोक। जो चोर यीशु मसीह के साथ क्रूस पर लटका हुआ था, यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? तू आज ही मेरे साथ कहां पर होगा?
स्वर्ग
लोक में। जब आप ग्रीक की बाइबल, हिब्रू की बाइबल से ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, टुडे यू विल बी विद मी इन पैराडाइज, नॉट इन हेवन। टुडे यू विल बी विद मी इन पैराडाइज। तो मेरे साथ स्वर्ग में नहीं बल्कि स्वर्ग लोक में होगा। तो जो भी प्रभु में सोता है, जिसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, वो कहां जाता है? स्वर्ग लोक जाता है। और दूसरा जो व्यक्ति जिसने विश्वास नहीं किया वो कहां जाता है? अधोलोक जाता है। इंग्लिश में कहते हैं हेडिस, नॉट हेल। हेल में नहीं जाएगा अभी, वो कहां जाएगा? हेडिस, वो अधोलोक में जाएगा। जब लाजर और उस धनी व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं, किसने पढ़ा हुआ है वो दृष्टांत? लाजर, हाँ, जो धनी व्यक्ति की देवड़ी से गिरता था, खाता था, उसके जख्म को कुत्ते चाटते थे, और वो जब, क्योंकि वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, तो जब वह प्रभु में सो जाता है तो अब्राहम की गोद में जाकर बैठ जाता है, स्वर्ग लोक पहुंच जाता है। सारे लोग जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है उनकी सोल इस वक्त कहां पर रेस्ट कर रही है?
स्वर्ग
लोक में, पैराडाइज में। और जो विश्वास नहीं करता उस धनी व्यक्ति के समान वो अधोलोक में तड़पने के लिए चला जाता है। वो कहता है ना वहां कितनी आग है, कितनी जलन, इतनी प्यास। वो कहता है तो लाजर से कहे कि वो अपनी उंगली को पानी में डुबोकर मेरी जीभ पर एक बूंद डाल दे। इतना दर्द वहां पर। ये पहला न्याय हो गया। दिस इज द फर्स्ट जजमेंट ऑफ गॉड विच इज गोइंग ऑन, जो चल रहा है। जो प्रभु पर विश्वास करता है यदि वो प्रभु में सो जाएगा सीधा स्वर्गलोक जाएगा, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करता यीशु मसीह को जिसने ग्रहण नहीं किया वो सीधा अधोलोक में तड़पने के लिए चला जाए। स्वर्गलोक में आनंद है और अधोलोक में दर्द है, पीड़ा है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ गया? ये है यीशु मसीह पर विश्वास करने का पहला जो है वो परमेश्वर का न्याय। हम कितने के बारे में सीख रहे हैं?
सात।
कितनी बार न्याय होगा?
सात बार।
हमने पहला देख लिया। वचन में लिखा है ना कि वो धर्मी को भी पृथ्वी पर फल देगा और दुष्ट को भी पृथ्वी पर फल देगा। जैसी जिसकी करनी होती है वैसे उसकी भरनी भी होती है। हर चीज को बारीकी से हमको समझना है। ये हो गया फर्स्ट जजमेंट। दूसरा जो जजमेंट है, अब जिन्होंने विश्वास किया है उनका भी दो प्रकार से जजमेंट होगा। विश्वासियों का दो प्रकार से जजमेंट होगा। हालेलुया,
हालेलुया,
हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की
जय।
जब आप पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 11 अध्याय 30 31 32 नोट कर लीजिए, घर पर जाकर पढ़िएगा। इतना समय नहीं है हमारे पास, लेकिन हम इसको घर पर जाकर पढ़ लेंगे और इस चीज को आज समझ लेंगे। क्योंकि मैं आपको परमेश्वर का आत्मा बार बार मुझे इस बारे में बोल रहा था कि मैं आपको इस चीज के बारे में, रैप्चर के बारे में, उठाए जाने के बारे में, हजार वर्ष के शासन के बारे में बताऊं। क्योंकि यदि रैप्चर हो गया तो प्रभु मुझसे पूछेगा तू तो यहां आ गया, उनको क्यों छोड़ाया, तूने उनको क्यों नहीं बताया। तो कलीसियाओं में रैप्चर के बारे में बताना बहुत जरूरी है। हजार वर्ष के शासन काल को प्रभु ने किसके लिए रखा है? विश्वासियों के लिए रखा है। और विश्वासियों को ही नहीं पता कि वो यीशु मसीह के साथ हजार वर्ष तक शासन करेंगे। जब विश्वासी मंडली है, विश्वासी लोग इकट्ठे हैं, तो विश्वासियों को वो यीशु मसीह के शासन, यीशु मसीह के साथ वो शासन करने के बारे में पता होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। हालेलुया। बोलिए होना चाहिए,
होना चाहिए।
रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 13 पद लिख लीजिए और पहले यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय 16 पद। ये हम जानते हैं कौन कौन सी बातें वहां लिखी है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का
घमंड।
रोमियो की पत्री कितना?
रोमियो 8:13, पहला यूहन्ना 2:16 और पहला कुरिन्थियों 11:30-32। मुख्य मुख्य वचन मैं आपको बता रहा हूं। ये दूसरा जजमेंट। अभी पहला जजमेंट तो हो गया विश्वास, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा। दूसरा, अब जो विश्वासी हैं, यहां पर देखिए हमने जो ये वचन पढ़ा था इसको निकालेंगे हम। जो हमने अभी मत्ती रची सुसमाचार पढ़ा था, ये सारी चीजें आप बाइबल कॉलेज में भी नहीं सीखेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा हमें सारी चीजें सिखाता है। मत्ती रची सुसमाचार जो 19वां अध्याय हमने पढ़ा था, यहां लिखा है 28वें पद में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा। देखिए बारीकी से वचन को पढ़िए। महिमा का सिंहासन कहां लिखा है? न्याय का सिंहासन कहां लिखा है? महिमा का मुकुट कहां लिखा है? और जीवन का मुकुट कहां लिखा है? हर एक शब्द का अर्थ है। बहुत बारीकी से हमको क्या करना है? समझना है। क्या करना है?
समझना
है।
हालेलुया।
ना केवल जानना है बल्कि उसको
समझना है।
यहां पर लिखा है यीशु मसीह कौन से सिंहासन पर बैठेगा?
महिमा
के सिंहासन पर। जो व्यक्ति, ये दूसरा जो न्याय है, इन इंग्लिश इट इज स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट जजमेंट। हिंदी में क्या कहेंगे? स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट, यानी आत्मिक जीवन से संबंधित है कि उस विश्वासी ने अपना आत्मिक जीवन कैसे बिताया। डिसर्नमेंट क्या कहते हैं? परखना। मतलब कि उसके आत्मिक जीवन को परखा जाएगा, आत्मिक स्तर। परमेश्वर जो है वो विश्वासियों के आत्मिक स्तर को परखेगा।
आत्मिकता की परख का न्याय जो होगा, आत्मिकता परखी जाएगी। हाँ, यहां पर जो है बिलीवर्स का जजमेंट होगा, यहां पर जो है विश्वासी लोगों के जीवन से यह देखा जाएगा कि उनके जीवन में क्या क्या था, जीविका का घमंड, हाँ, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, उन्होंने इस प्रकार अपने जीवन को बिताया या नहीं बिताया। उनकी आत्मिकता का स्तर देखा जाएगा कि उनके जीवन में आत्मिकता की कितनी भरपूरी थी, उनके जीवन में वो आत्मा का अभिषेक, जो आत्मा का जो भरपूरी, उसका जो सामर्थ्य था वो टखने तक था, घुटने तक था, कमर तक था, या वो व्यक्ति पूरा उस भरपूरी में डूबा हुआ था। वहां पर यह देखा जाएगा कि इस व्यक्ति ने अपने समय का, अपने टैलेंट का और अपने ट्रेजर का परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया या नहीं किया। प्रभु कहेगा तू जिस वक्त टीवी देख रहा था उस वक्त तू बाइबल पढ़ सकता था, जिस वक्त तूने 3 घंटे क्रिकेट मैच देखा उस वक्त कम से कम 1 घंटा तू प्रार्थना कर सकता था। प्रभु देखेगा कि हमने प्रार्थना में समय बिताया या नहीं, प्रभु देखेगा कि हमने वचन को पढ़ने में समय बिताया या नहीं बिताया, प्रभु देखेगा कि हमने हर्ष से दान दिया या नहीं दिया, प्रभु देखेगा कि हमने विश्वास करने के बाद अपने विश्वासी मंडली के साथ संगति की या नहीं की। आज हम प्रभु की मेज में भाग लेने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो 4 बातें प्रेरितों के काम 2:42 में, जब विश्वासी मंडली की स्थापना हो गई तो वो क्या करते थे, वो प्रार्थना करने में लौलीन रहते थे, वो प्रेरितों से शिक्षा पाते रहते थे, वो प्रभु की मेज में भाग लेते थे, वो संगति करते थे। केवल विश्वास करना काफी नहीं है, उसके बाद हमको आत्मिक उन्नति करनी है। प्रभु देखेगा उस दूसरे जजमेंट में किसने विश्वास तो किया, परंतु क्या इसने विश्वास करने के बाद अपने विश्वास को जीवित रखा, क्योंकि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है, उस विश्वास को जीवित रखना है। वो देखेगा प्रभु कि हमने क्या वास्तव में उस आत्मिक जीवन को जिया है या नहीं। जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। हालेलुया, जितने आत्मा के चलाए चलते हैं, इसलिए वहां पर हमारी आत्मिकता देखी जाएगी। हमें कोई नहीं देख रहा उस वक्त, लेकिन प्रभु तो हमें देख रहा है ना, कि हम आंखों से क्या देख रहे हैं, हम मुंह से क्या शब्द बोल रहे हैं। वचन में लिखा है ना कि एक एक शब्द जो हमारे मुंह से निकलता है प्रभु एक दिन हमसे उसका हिसाब। प्रभु के वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक को उसके काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। यानी ऐसा नहीं है कि विश्वास कर लिया और उसके बाद जो चाहे अब हम कर सकते हैं। विश्वासियों का भी न्याय होगा, और वैसे तो पहला एक बार हुआ लेकिन विश्वासियों का तो 2 बार होगा। एक तो आत्मिकता के संबंधित स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट जजमेंट, और दूसरा जो विश्वासियों का न्याय होगा वो उनके बुलाहट के अनुसार होगा। पहला विश्वास और दूसरा
बुलाहट।
वो पहला न्याय इससे होगा कि वो विश्वास के प्रति विश्वास योग्य थे या नहीं, और दूसरा जो होगा वो अपनी बुलाहट के प्रति विश्वास योग्य थे या नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको परमेश्वर बुलाता है, परंतु वो क्या करते हैं, वो अपने काम को करते रहते हैं लेकिन परमेश्वर की जो बुलाहट उनके जीवन में थी उसको वो पूरा नहीं करते। हर किसी विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है। ऐसा कोई भी विश्वासी नहीं है जिसको परमेश्वर ने नहीं बुलाया है। हालेलुया, परमेश्वर ने सबको बुलाया है, हर एक को परमेश्वर ने बुलाया है। हमें इस बात को समझना है। अगर आप देखें, इसका रेफरेंस मैं आपको देना चाहता हूं 2 कुरिन्थियों की पत्री 5:10। पहले कुरिन्थियों की पत्री 3:12। मत्ती 25:21। कितने लोगों ने बाइबल में तोड़ों का दृष्टांत पढ़ा हुआ है? हाँ, तोड़ों का दृष्टांत पढ़ा है ना आप लोगों ने। किसी को 5 मिले हैं, किसी को 3 और किसी को 1 मिला, लेकिन मिला सबको। वो उन वो जैसे प्रभु के लिए मौजूद थे और जितना प्रभु का काम करने का बोझ उनके अंदर था उसके अनुसार प्रभु ने दिया था, क्योंकि प्रभु मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो जानता था इसको तीन तोड़े देना बेकार है, इसलिए इसको एक ही देता हूं। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते कि प्रभु मनों को जांचता है? हालेलुया। हम कितना प्रभु के लिए समर्पित है, कितना हमारे अंदर प्रभु का काम करने का बोझ है और कितना प्रभु के लिए मौजूद हैं, उसके अनुसार प्रभु हमें तोड़े देता है अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए। अगर आप मत्ती 25 उसका 21वां पढ़े तो देखिए, जब प्रभु ने वो तोड़ों के बारे में जब दिया तो वहां पर क्या लिखा है, 21वें अध्याय में, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी। हर एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए भाग रहा है, एक दिन प्रभु उसे उसका प्रतिफल देगा। हालेलुया। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रभु के लिए किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं होता है? हालेलुया। अगर हम पहला कुरंथी के पत्र उसका 15 अध्याय उसका 58वां पद पढ़ेंगे, फर्स्ट कुरंथियन चैप्टर 15 और वर्स 58, तो वहां पर लिखा है, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते रहो, अटल रहो, क्योंकि तुम जानते हो कि प्रभु के लिए किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं है। अगर एक व्यक्ति प्रभु के लिए परिश्रम कर रहा है, प्रभु के राज्य के लिए आत्माओं को जीत रहा है, वो प्रभु की आराधना करता है या कुछ भी, बहुत सारे ऐसे गीत लिखने वाले लोग हैं जो गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करते हैं, बहुत सारे ऐसी जगह जगह पर जाकर प्रचार करते हैं जहां कोई यीशु मसीह के नाम को जानता नहीं है, वो यीशु मसीह के राज्य के लिए आत्माओं को जीतते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, क्या प्रभु उनको उनके काम का प्रतिफल नहीं देगा? देगा, जरूर देगा। हालेलुया। वो देगा, जरूर देगा, और वो कहेगा, धन्य है विश्वास योग्य दास, आ अपने स्वामी के आनंद में भाग, क्योंकि प्रभु के लिए किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। प्रभु जो है वो हमें हमारे हर एक काम के लिए प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए ये तीसरा जजमेंट जो हमको ये समझना है कि परमेश्वर विश्वासियों का न्याय उनके आत्मिकता के अनुसार, यानी उनकी पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ कैसा था, उनका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ कैसा था, उनका आत्मिक जीवन कैसा था। और दूसरा जो विश्वासियों का न्याय होगा वो इस बात से होगा कि उन लोगों ने, उन विश्वासियों ने जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उन विश्वासियों ने अपनी जो परमेश्वर ने उनके जीवन में बुलाहट रखी थी, क्या उस बुलाहट को पूरा किया या नहीं, क्या उन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए आत्माओं को जीता या नहीं, क्या वो परमेश्वर के लिए भागे या नहीं भागे। पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर भागा चला जाता हूं। क्या हम वास्तव में उस निशाने की तरफ भागे चले जा रहे हैं या नहीं चले जा रहे हैं? मैं एक व्यक्ति से फोन पे बात कर रहा था और मैंने उस व्यक्ति को 1000 वर्ष के शासनकाल के बारे में बताया, तो उस व्यक्ति ने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट मुझे दी। उसने कहा, पास्टर जी मैं समझ गया, इसका मतलब ये है अगर 1000 वर्ष शासक की गति पे बैठना है तो इस जीवन में भागना पड़ेगा। हालेलुया। उसने कहा मैं समझ गया, अगर मुझे 1000 वर्ष का शासनकाल करना है और यीशु मसीह के साथ शासन की गद्दी पे बैठना है, इसका मतलब इस जीवन में मुझे प्रभु के लिए दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु के लिए किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। सच में हमारा एवरी टेस्ट मस्ट बिकम अ टेस्टमनी, हमारा हर एक टेस्टमनी बनना चाहिए, ताकि उस 1000 वर्ष के शासन काल में लोग देखें कि हम प्रभु के साथ शासन कर रहे हैं। क्या हम उस सौभाग्य को नहीं लेना चाहते अपने जीवन में? और मैं आपसे कहना चाहता हूं, 1000 वर्ष कोई छोटा समय नहीं है, 1000 साल कोई छोटा समय है। यहां पर इस पृथ्वी पर हम कितने साल जिएंगे? 60, 70, 80, अधिक से अधिक 120। परंतु इस जीवन के खत्म होने के बाद 1000 वर्ष का शासन काल प्रभु ने रखा हुआ है। लोग सोचते हैं यीशु पे विश्वास किया, चाहे थोड़ा भागे या ज्यादा भागे, जाना तो स्वर्ग में ही है। ऐसा सोचते हैं लोग। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया, आप चाहे संडे को चर्च होता है एक दिन चले जाएंगे, तीन दिन नहीं जाएंगे, या दो दिन चले जाएंगे, दो बार चले जाएंगे और दो बार नहीं जाएंगे। परमेश्वर सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है। जो चार बार जाएगा उसकी पोजीशन बड़ी होगी, जो दो बार जाएगा उसकी पोजीशन नीची होगी हजार वर्ष के शासन काल में। ये सच बात है। आज प्रभु हमें ये सारी चीजें सिखाना चाहता है। क्या प्रभु सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर नहीं है? क्या एक व्यक्ति जो उद्धार पाने के बाद प्रभु के लिए भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, और एक व्यक्ति उद्धार पाने के बाद तीन घंटा क्रिकेट मैच देख रहा है, फैमिली ड्रामा देख रहा है, क्या प्रभु दोनों का बराबर ही प्रतिफल देगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो हजार वर्ष तक शर्म का जीवन जिएगा। जो व्यक्ति इस जीवन में, ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति इस जीवन में अपनी मर्जी से जिएगा वो हजार वर्ष के शासन काल में शर्म का जीवन जिएगा। चुनाव आपका है। जो व्यक्ति इस जीवन में अपनी आत्मिकता के लिए, आत्मा के चलाए नहीं चलेगा, अपनी आत्मिकता के लिए गंभीर नहीं होगा, वो कभी भी प्रभु के साथ हजार वर्ष का शासन काल नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति प्रभु के लिए आत्माओं को नहीं जीतेगा, जो अपनी गवाही को दूसरों के साथ नहीं बांटेगा, आप जानते हैं प्रेरितों के काम पहला अध्याय आठवें पद में, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे क्या ठहरोगे? गवाह ठहरोगे। जब आप ग्रीक से पढ़ेंगे उसका ट्रांसलेशन, तो गवाह का जो विटनेस है ना, वो विटनेस नहीं है, वहां पे मार्टियर है, मार्टियर, शहीद। लोग सोचते हैं गवाह ठहरेंगे। हाँ, मैं भी तो गवाही दी है, मैं भी चर्च में खड़े होकर कई बार गवाही दी है, मैं पे सामर्थ उतरा है, मैं तो गवाही दी है, लोगों को बताया। प्रभु कहता है गवाह नहीं है वहां पे, मतलब है शहीद, तुम मेरे लिए शहीद हो। हालेलुया। तभी तो पौलुस को क्रूस पे उल्टा लटका दिया गया, प्रभु के सारे चेलों को, किसी को घोड़े से खींच खींच के जब तक वो मर नहीं गया, किसी को तलवार से काट दिया, किसी को जलते हुए तेल में फेंक दिया। ऐसा ऐसा हुआ है प्रभु के चेलों के साथ, जिनके सुसमाचार पढ़ रहे हैं हम बैठ के, उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। पता है आपको, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, यदि प्रभु का एक चेला 25 साल की उम्र में शहीद हो गया ना, वो 1000 साल तक प्रभु के सबसे नजदीक बैठेगा। हालेलुया। क्योंकि उसने उस जीवन के बारे में सोचा ही नहीं था, उसने उस हजार वर्ष के शासन के बारे में सोचा था, इसलिए वह शहीद हो गया। क्या आज हम इस जीवन में प्रभु के लिए शहीद होना चाहते हैं? लोग इसलिए प्रभु की सेवा नहीं करते क्योंकि वो नौकरी पर है, गवर्नमेंट जॉब पर है, वो कहते हैं गवर्नमेंट जॉब करना जरूरी है, सेवा ठीक है कर रहे हैं, इतनी चलती है। प्रभु कहता है मैंने तुम्हें गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं बुलाया, शहीद होने के लिए बुलाया। हालेलुया। प्रभु कहता है मैंने तुम्हें बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए नहीं बुलाया, शहीद होने के लिए बुलाया है। आज प्रभु का आत्मा यदि आपके हृदय को कायल करे तो अपने आप को कठोर मत कीजिएगा। मैं आपको सच बात बताना चाहता हूं, प्रभु के चेले क्यों प्रभु के लिए शहीद हुए थे? क्योंकि वो जानते थे कि अगर इस जीवन में शहीद होंगे तो हजार वर्ष का शासन प्रभु के साथ करेंगे। प्रभु यहां पर कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब महिमा के सिंहासन पर बैठूंगा, तुम जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि हम एक दिन स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? कितने लोगों को पता है कि हम एक दिन स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? बाइबल बताती है हम एक दिन स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। निकालिए यहूदा की पत्री 6 अध्याय, हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। ये समझना है हमको, क्या करना है? समझना है। एक ही व्यक्ति बोल रहा है, क्या करना है? समझना है। यहूदा की पत्री 1 अध्याय, उसमें 6 पद, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में क्या करा है? रखा है। और वो स्वर्गदूत, पौलुस बताता है कि तुम, क्या तुम नहीं जानते कि तुम जो है स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? और इन स्वर्गदूतों का हम न्याय करेंगे जो उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु ने 120 साल की जो एज थी उसको लिमिट किया, उसका कारण यही था कि उन स्वर्गदूतों ने बगवा किया और वो क्या करते थे, वे विचार करके अमर संतानें पैदा करना चाहते थे। इसीलिए प्रभु ने पहले तो आप देखते ना किसी की 900 साल उम्र होती थी, किसी की 700 साल होती थी, लेकिन उसके बाद प्रभु ने क्या कहा, प्रभु ने उनके लिए एक लिमिट ठहरा दी 120 साल। उसका भी ये कारण है। उस अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है उस जमाने में दानव हुआ करते थे, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। तो हमें इन सारी चीजों को समझना है, हमें इन सारी चीजों को जानना है कि वास्तव में ये जो जीवन है ना आपका, जो अभी आप इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, इस जीवन में आपको एक तो अपनी आत्मिकता में अच्छे रहना है और दूसरा आपको अपनी बुलाहट के प्रति विश्वास योग्य रहना है। जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए आपके लिए बुलाहट दिया उसको आपको पूरा करना है ताकि प्रभु आपको विश्वास योग्य कहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर हम लोग, मैं अपने आप को आपके साथ शामिल करके बोलना चाहता हूं, अगर इफ अगर हम लोग ना तो अपनी आत्मिकता में अच्छे रहते हैं ना हम अपनी बुलाहट को पूरा करते हैं, हमें उन हजार वर्ष के शासन काल में प्रभु अपने साथ नहीं लेता है, तो हम सोचिए हजार साल तक एक शर्म का जीवन जिएंगे, हम पछताएंगे। वो व्यक्ति रोज पछताएगा, हर घंटे पछताएगा, हर मिनट पछताएगा कि मैंने बाइबल पढ़ने में समय क्यों नहीं दिया, मैंने प्रार्थना करने में समय क्यों नहीं दिया, मैं क्यों धर्म अधर्मियों की संगति करता रहा, मैं क्यों संडे को चर्च नहीं गया, अगर जाता तो पास्टर सिद्धार्थ मुझे सारी चीजें सिखा देते, प्रभु के वचन से मैं सारी चीजें सीख जाता, मैं क्यों नहीं गया, मैंने क्यों जानने की कोशिश नहीं की। हालेलुया। जो जानता है उसको भी मार पड़ेगी और जो नहीं जानता उसको इसलिए मार पड़ेगी क्योंकि उसने जानने की कोशिश नहीं की, उसको भी मार पड़ेगी क्योंकि उसने जानने की कोशिश नहीं की। अगर वो कोशिश करता जाता तो उसे भी समझ में आता। आज लोग यही सोचते हैं, केवल यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, उद्धार हमको मिल गया, एक दिन तो हमें स्वर्ग जाना है। परंतु परमेश्वर सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है। स्वर्ग तो जाएंगे, परंतु स्वर्ग जाने से पहले प्रभु ने अपने न्याय को सच्चा करने के लिए 1000 वर्ष का शासन काल रखा हुआ है। कितने लोग उस 1000 वर्ष में शर्म का जीवन जीना चाहते हैं, वो अपना हाथ ऊपर करें। आप चाहते हैं 1000 साल तक शर्म का जीवन जीना चाहते हैं, या प्रभु के साथ कितने लोग 1000 साल तक शासन करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। अगर हम 1000 साल तक यीशु मसीह के साथ शासन करना चाहते हैं तो हमें धन्य बनना है, हमें विश्वास योग्य बनना है ताकि प्रभु हमसे कहे धन्य है विश्वास योग्य दास। तू जो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तू जो 60 साल के थोड़े से जीवन में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे 1000 साल का 100 गुना जीवन देना चाहता हूं। यह है इसका मतलब। तू जो थोड़ी जिंदगी में विश्वास योग्य रहा, मैंने तेरे लिए एक बड़ी जिंदगी रखी हुई थी 1000 साल की, ताकि तू वहां पर एक शासक की तरह जीवन जी सके। देखिए यीशु मसीह के ऊपर जिसने विश्वास किया है वो स्वर्ग तो जाएगा ही जाएगा, पक्का जाएगा, चाहे वो चर्च आए या ना आए, चाहे वो बाइबल पढ़े या ना पढ़े। उसे अपने विश्वास के प्रति काम करना पड़ेगा। उसे क्या करना पड़ेगा, अपने अगर वो यीशु मसीह का मरते दम तक इनकार नहीं करता कि यीशु तू मेरा प्रभु नहीं, अगर वो इनकार नहीं करता और यही कहता है कि यीशु मेरा प्रभु है, चाहे वो कम समय ही क्यों नहीं प्रभु को देता है, लेकिन वो स्वर्ग तो जाएगा, लेकिन वो कभी 1000 वर्ष तक प्रभु के साथ शासन नहीं कर पाएगा। वो 1000 वर्ष तक रोज शर्म का जीवन जिएगा। और 1000 साल कोई छोटा समय नहीं है, इट्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड, एक बहुत बड़ा समय है 1000 साल। और वो ऐसे ही 24 घंटे होंगे, वो ऐसे ही रोज का दिन होगा, ऐसे ही हफ्ते के 7 दिन होंगे, ऐसे ही महीने, ऐसे ही साल होंगे, 1 साल 2 साल 10 साल 100 साल 150 साल 200 साल 500 साल 700 साल 800 900 1000 सालों तक, इतने लंबे समय तक वो व्यक्ति जो है शर्म का जीवन जिएगा। क्या हम थोड़े में विश्वास योग्य रहना चाहते हैं प्रभु से? आज प्रभु से कहे प्रभु मैं थोड़े में विश्वास योग्य रहना चाहता हूँ। अपने मुंह को खोलकर बोलिए प्रभु मैं थोड़े में विश्वास योग्य रहना चाहता हूँ। ये सच बात है मेरे प्रिय। और वो व्यक्ति जो थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा वो बहुत लंबे समय तक प्रभु से आशीष को पाएगा। प्रभु कहता है कि तुम जो मेरे पीछे हो लियो हो, मैं तुम्हें कितना गुना दूंगा। और जिस किसी ने, सब बोलिए जिस किसी ने,
जिस किसी ने
29वें पद में लिखा है उस जिस किसी में हम भी आते हैं, और जिस किसी में, उसमें बोलिए और मैंने अपने घरों,
अपने
भाइयों
बहनों,
पिता माता बाल बच्चों, खेतों को परमेश्वर के लिए छोड़ दिया, तो मुझे 100 गुना मिलेगा और अनंत जीवन भी मिलेगा। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि उसको 100 गुना पहले मिल जाएगा, यानी वो 1000 वर्ष का शासन भी करेगा और फाइनली उसे अनंत जीवन भी मिल जाएगा। परंतु जो नहीं करेगा वो क्या होगा, अधिकारी नहीं होगा, लेकिन फाइनली डायरेक्ट वो स्वर्ग में तो जा सकता है। इस प्रकार ये आपको एक बहुत अच्छी बात मैं बताना चाहता हूं। देखिए हो सकता है कि बातें आपने पहले नहीं सुनी है, बहुत सारे लोगों को ये चीजें नहीं लग रही होंगी, परंतु मैं चाहता हूं कि हम सब लोग इस बारे में अनजान ना रहें, हम सब समझे इन सब चीजों को। और यहां पर देखिए एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। जब आप 16वें पद से पढ़ते हैं 19वें अध्याय के, सुनिए ध्यान से, तो यीशु मसीह कहते हैं तू तो जानता है आज्ञाओं को माना कर, हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, ये सब चीजें ना करना। तो वो क्या कहता है कि प्रभु ये तो मैं पहले से ही बचपन से ये सारी चीजें जो है करता हुआ आ रहा हूं। तो प्रभु कहता है फिर ऐसा कर, तू अपनी सारी संपत्ति को कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो जाए। तो वो उदास होकर चला जाता है। तो प्रभु का एक दास जो है पतरस यहाँ पर है ना, तो वो कहते हैं कि प्रभु फिर ऐसे कौन मनुष्य जो है, यहाँ पर कहता है कि तुम में, फिर मैं कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में 24वें पद में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, यानी आसान है। यह सुनकर चेले चकित हुए, फिर किसका उद्धार हो सकता है। तो यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, मनुष्य से, मरकुस 9:27 में भी ये बात लिखी गई है कि मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ
हो सकता है।
देखिए उद्धार जो हमें मिला है ना, अनंत जीवन जो हमें मिला है, वो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है, परमेश्वर का वो मुफ्त तोहफा है, वो मुफ्त तोहफा। अगर हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होता है और हमें अनंत जीवन मिलता है। अनंत जीवन तो मिलेगा, जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा और 1000 वर्ष का शासन पाएगा। मैं फिर से कहता हूं विश्वास से केवल अनंत जीवन मिलेगा, परंतु यदि प्रभु से प्रेम करेंगे तो 1000 वर्ष का शासन मिलेगा। इस बात को समझ लीजिए, इसीलिए लिखा गया है कि प्रेम सबसे बड़ा है। अविश्वास आशा, हाँ विश्वास आशा और प्रेम, ये तीनों क्या है, स्थाई हैं, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा क्या है,
प्रेम।
और जब यीशु मसीह के पास लोग आए तो यीशु मसीह ने क्या कहा, सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि तू तो अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी समझ के साथ प्रेम कर। यीशु मसीह ने योना 14:15 में क्या कहा, यदि तुम उससे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मान लो। अगर अदन की वाटिका में आदम और हव्वा उस प्रेम के टेस्ट को पार कर देते तो कुछ होता ही नहीं। आज क्या हम इस प्रेम के टेस्ट को पार कर पा रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर दिया है। वहां आदम और हव्वा फेल हो गए थे अदन की वाटिका में, क्या आज हम पास होंगे इस टेस्ट में? दिस इज द टेस्ट ऑफ लव ऑन दिस अर्थ, वी आर गिविंग द टेस्ट ऑफ लव। और परमेश्वर कहता है कि यदि तुम उससे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो, क्योंकि सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि तू अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी समझ के साथ परमेश्वर से प्रेम कर। आदम और हव्वा उस लव टेस्ट में फेल हो गए। क्या हम यहां पर फेल अगर हो गए इस लव टेस्ट में, अगर वो बिलीवर फेल हो गया तो वो कभी भी प्रभु के साथ 1000 वर्ष तक शासन नहीं कर पाएगा, उसे वो सौभाग्य मिलेगा ही नहीं। नहीं तो प्रभु का न्याय सच्चा कैसे हुआ? वो तो सच्चे न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो दोषी को कभी भी निर्दोष नहीं ठहरा सकता है। जो हमने किया है उसका हमें प्रतिफल तो मिलेगा ही मिलेगा, और 1 साल 2 साल नहीं मिलेगा बल्कि 1000 साल तक उसका प्रतिफल हमें मिलता रहेगा। ये छोटी सी जिंदगी के लिए यहां पर हम बाइबल नहीं पढ़ना चाहते, यहां पर हम दुआ नहीं करना चाहते, यहां हम चर्च नहीं जाना चाहते, प्रभु की मेज में नहीं भाग लेना चाहते, यहां पर हम आंखों के अभिलाषा में पड़े हुए हैं, यहां हम जीविका के घमंड में पड़े हुए हैं, यहां हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, यहां हम दुनियावी बातों में लगे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को लिखा है 12:15 में, देखिए 22:15 में साफ लिखा हुआ है। मैं हमेशा कहता हूं कुत्ते टोहने व्यभिचारी हत्यारे मूर्ति पूजक हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला परमेश्वर के राज्य से बाहर रहेगा। किसी ने टीवी सीरियल पर झूठ को गढ़ा और आप उस झूठ को चाह रहे हैं तो वो तो खुद भार था ही, वो आपको भी खींच के बाहर कर देगा उस 1000 वर्ष के शासन काल से। किसी ने लिखा है झूठ का गढ़ने वाला और चाहने वाला, दोनों, सब बोलिए गढ़ने वाला,
वाला।
बिग बॉस सीरियल बनाने वाला तो बाहर रहेगा ही रहेगा, जो बिग बॉस सीरियल देख रहा है वो भी बाहर रहेगा। सीधी सी बात है, जिसने बिग बॉस सीरियल बनाया वो सलमान खान तो बाहर है ही है, उसको देखने वाले भी बाहर रहेंगे क्योंकि वो उसे चाह रहे हैं। वाह 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 वाह, हा हा हा। लिखा हुआ है यहां पर, साफ लिखा हुआ है कि हर एक झूठ का चाहने वाला, देखिए वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, बड़ा अन्य भाषा में प्रार्थना करता है। प्रभु के वचन में लिखा है यदि तू स्वर्गदूतों की बोली बोले, हैं, अन्य अन्य भाषा बोले, भविष्यवाणी करे लेकिन प्रेम ना करे प्रभु से, तो तू ठन ठनाता हुआ पितर और झंझनाती छा जाए। तू स्वर्ग तो चला जाएगा अंतिम में, अनंत जीवन तो तुझे मिल जाएगा, लेकिन 1000 साल तक तू शर्म करेगा, शर्म का जीवन जिएगा, अपने ऊपर धिक्कारेगा, पछताएगा कि मैंने क्यों बिग बॉस देखा, मैंने क्यों ये सांसारिक चीजों को देखा, मैं क्यों आंखों की अभिलाषा में पड़ा रहा, मैं क्यों जीविका के घमंड में पड़ा रहा। 1000 साल तक पछताता रहेगा, रोता रहेगा, दांतों को पीसता रहेगा, आंसू बहाता रहेगा, लेकिन प्रभु कहेगा तू मेरे राज्य में नहीं आ सकता, तू निकम्मा दास है, तुझे केवल अनंत जीवन तो मिल जाएगा लेकिन तुझे 1000 वर्ष का शासन काल नहीं मिलेगा। हर एक झूठ का चाहने वाला, लोग टीवी देखते हैं सेंट्रल टेबल के ऊपर पैर रख के, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर ऐसे चढ़ा के, और टीवी के ऊपर झूठ जो आ रहा है उसको देखते हैं। वो झूठ के गढ़ने वाले तो बाहर रहेंगे और झूठ को चाहने वाले भी बाहर रहेंगे। जिस समय से मैंने इस वचन को समझ लिया, उस समय से मैंने समझ लिया कि शैतान की बहुत बड़ी चाल है टेलीविजन। देखना है कुछ समाचार देखिए, लेकिन बहुत कम समय के लिए, और जो सही समाचार है वो देखिए। सलमान खान की कौन नई गर्लफ्रेंड बनी है ये मत देखिए, वो सारी न्यूज मत देखिए उसके ऊपर, केवल ये देखिए कि कौन भारत का प्रधानमंत्री है ताकि उसके लिए प्रार्थना कर सके। हालेलुया,
हालेलुया।
कौन हमारे राज्य का चीफ मिनिस्टर है, कम से कम उसके लिए प्रार्थना कर सके, इतना तो पता होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा अगर उनके झूठों को आप चाहने लगे तो वो तो बाहर है, 1000 वर्ष का शासन वो तो करेंगे ही नहीं करेंगे। आपको भी उस 1000 वर्ष के शासन के सौभाग्य को वो चोर जो है वो चोरी कर लेगा, और आप 1000 वर्ष तक पछताते रहेंगे, क्योंकि प्रभु सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है। लोग सोचते हैं कि सिर्फ अवार्ड सेरेमनी होगी, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, अवार्ड सेरेमनी होगी, जिसने प्रभु के लिए ज्यादा काम किया होगा उसे बड़ी वाली ट्रॉफी मिलेगी, है जी, वर्ल्ड कप, और जिसने प्रभु के लिए थोड़ा काम किया उसे छोटी वाली ट्रॉफी मिल जाएगी। बहुत से लोग ऐसे प्रचार करते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ट्रॉफी का कोई सिस्टम नहीं है, मुकुट का सिस्टम है। हालेलुया, मुकुट मिलेगा महिमा का या नहीं मिलेगा? महिमा का मुकुट मिलेगा तो महिमा के सिंहासन पे यीशु मसीह के साथ बैठेंगे, नहीं तो फिर शर्म का मुकुट मिलेगा। यह हमारा निर्णय है कि हम 1000 वर्ष तक महिमा में जीवन जीना चाहते हैं या हम 1000 वर्ष तक शर्म का जीवन जीना चाहते हैं। और बताते 1000 साल छोटे नहीं होते, मैं इस बात को बार बार आपको बोल रहा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को समझें। चौथा जो जजमेंट है वो नेशंस का है, देशों का न्याय करेंगे, प्रभु के साथ प्रभु के जो लोग होंगे वो देशों का न्याय करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 25:32-34 और मत्ती रचित सुसमाचार 25:35-40 तक प्रभु कहता है कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना दिया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े दिए, जब मैं तुम्हारे घर आया ना तुमने मुझे जगह दी। जो अन्य जाति के लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, जो इस बात को नहीं समझते, इस बात को नहीं मानते, अगर उन्होंने विश्वास किया होगा तो अनंत जीवन उनको मिलेगा, परंतु अगर उन्होंने विश्वास नहीं किया तो सीधी सी बात है वो अधोलोक में सड़ रहे होंगे, और उसके बाद उनका न्याय जो उस वक्त जीवित लोग बचे हुए होंगे कौन करेगा? हम लोग करेंगे। हालेलुया। और इसके बाद जो पांचवा जो न्याय है वो है इसराइल का, इसराइल का न्याय, जजमेंट ऑफ इसराइल। नंबर 4 इज जजमेंट ऑफ जेंटाइल्स, नंबर 5 इज जजमेंट ऑफ इसराइल। यहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम 12 सिंहासनों पर बैठकर इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। 12 गोत्रों का न्याय जो है प्रभु के जो 12 चेले वो करेंगे, प्रभु के लोग जो है वो वहां पर महिमा के सिंहासन पर बैठकर इसराइल का न्याय करेंगे। और छठा जजमेंट, जजमेंट ऑफ एंजल्स, स्वर्गदूतों का न्याय। पौलुस कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि हम लोग जो है स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। कौन से स्वर्गदूत का हम न्याय करेंगे? मैंने अभी आपको बताया ना, वो स्वर्गदूत जो बेड़ियों में जकड़े हुए पड़े हैं, हम उनका न्याय करेंगे और उन्हें वहां से निकाल के सदा के लिए, जब 1000 वर्ष का शासन काल हो जाएगा तो एक लास्ट स्टैंड के लिए शैतान को छोड़ा जाएगा। 1000 वर्ष के शासन काल के समय पर शैतान को बांध दिया जाएगा, उस वक्त प्रभु के लोग शासन करेंगे, शैतान का काम नहीं होगा। और 1000 वर्ष का शासन काल खत्म होने के बाद एक लास्ट स्टैंड होगा शैतान का, उसे थोड़े समय के लिए छोड़ा जाएगा और फिर उसे पकड़कर और उसके जितने दूत, दुष्टात्माएं, शैतान और वो सारे लोग जिसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया, वो सीधा अधोलोक से कहां पर चला जाएगा? नर्क में चला जाएगा। वो नर्क की आग यीशु मसीह ने कहा जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। समझ गए आप? नर्क में कौन कौन होगा? शैतान, शैतान के दूत और हर एक वो व्यक्ति जिसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं। और लास्ट का सातवां जो जजमेंट है वो है व्हाइट थ्रोन जजमेंट। बाद में व्हाइट थ्रोन जजमेंट होगा, परमेश्वर न्याय के सिंहासन पर बैठेगा और जितने जो समुद्र में जो हैं वो अपने मुर्दों को दे देंगे, और जो पृथ्वी पर है वो सब जितने लोग जो मर चुके हैं फिर उन सब लोगों का न्याय होगा, और जिसने विश्वास किया होगा वो स्वर्ग जाएगा और जिसने विश्वास नहीं किया वो नर्क जाएगा। यीशु मसीह के ऊपर हालेलुया, हालेलुया। जिनका नाम जीवन की पुस्तक में, तब पुस्तकें खोली जाएंगी, उस वक्त जब व्हाइट थ्रोन जजमेंट होगा तब पुस्तकें खोली जाएंगी, और अगर जीवन की पुस्तक में उस व्यक्ति का नाम लिखा होगा तो अनंत जीवन को पाएगा, अगर उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया नहीं किया तो वो नर्क में तड़पने के लिए जाएगा। परंतु मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इस बात को समझ लीजिए, परमेश्वर के टाइम टेबल को देखिए कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता, परमेश्वर के समय को कोई नहीं समझ सकता, परमेश्वर की बुद्धि को कोई नहीं समझ सकता। प्रभु ने कहा ना कि मैं दृष्टांतों में तुमसे बातें करता हूं, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं इन दृष्टांतों को तुम्हारे ऊपर जाहिर करना चाहता हूं ताकि तुम इन भेद की बातों को समझो, तुम इन भेद की बातों को जानो। प्रभु कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे गूढ़ और रहस्य की बातों को बताऊंगा। मैं जब गुजरात गया था तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरी सुबह उठने की आदत बन गई 5 बजे की, क्योंकि वहां सुबह 5 बजे उठ के प्रार्थना होती थी। और वो दिन है और आज का दिन है, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं सुबह उठूं और प्रार्थना करूं। और मैं सुबह उठ के जब प्रार्थना करता हूं भोर की प्रार्थना में, तो प्रभु वो गूढ़ और रहस्य की बातों को मेरे ऊपर जाहिर करता है। सच में वो वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ है कि तुम उससे प्रार्थना कर तो मैं तुझे गूढ़ और रहस्य की बातों को समझाऊंगा। सच में जब हम परमेश्वर को समय देते हैं तो प्रभु के लिए किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता। ये सारी बातें मैं आपको समझाना चाहता हूं, इन सारी बातों को आप समझ लीजिए कि अब जो है वो समय नजदीक है कि रैप्चर होने वाला है। सब बोलिए रैप्चर। रैप्चर क्या होता है? उठाया जाना। पुराने नियम में 2 लोगों का रैप्चर हुआ, किस किस का? हनोक का और एलिया का। और जब यीशु मसीह मुर्दों में से 3rd दिन जी उठे, वो पुनरुत्थान का पहला फल, यीशु मसीह जब जी उठे तो बहुत सारे पवित्र लोगों की कब्रें खुल गई और बहुत सारे पवित्र लोगों को देखा गया। वहां पर बहुत सारे पवित्र लोगों का पुनरुत्थान हो गया यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने के बाद। यीशु मसीह पहला था फल और बहुत सारी कब्रें जो थी वो खुल गई और बहुत सारे पवित्र लोगों को वहां पर देखा गया। वो रिजरेक्टेड लोग और रैप्चर के लोग, अब जो रैप्चर होने वाला है इसमें एक टीम तैयार होगी, और रैप्चर होने के बाद 7 साल का ट्रिब्यूलेशन का समय चलेगा, यानी महाकलेश का समय। कितने लोगों ने पढ़ा है इस बारे में, महाकलेश के समय के बारे में? कितने साल का होगा?
सात.
सेवन बार बार क्यों बाइबल में यूज किया गया? सात आत्माएं, सात कलीसिया, सात दिन में सृष्टि की रचना करना, सात ही पर्व होते हैं. सात बार बार बाइबल में यूज करने का मतलब यह है, इसीलिए सेवन यूज किया गया है, क्योंकि ग्रीक और हिब्रू से जब बाइबल ट्रांसलेट की गई है तो सेवन जो शो करता है ग्रीक में, वो परफेक्शन को शो करता है. परफेक्शन यानी कंप्लीट, पूरा. जब यीशु मसीह ने अपने काम को पूरा कर दिया तो उन्होंने क्या कहा? पूरा हुआ. हालेलुया. कंप्लीशन यानी वहां पर परफेक्शन को शो करता है सेवन जो नंबर है. इसलिए सात साल का वो ट्रिब्यूलेशन का, महाकलेश का समय होगा. परमेश्वर अपने लोगों को उस महाकलेश से पहले ही उठा लेगा. किन लोगों को उठा लेगा? जो अपनी आत्मिकता में परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य थे, जिन लोगों ने प्रभु के प्रति अपनी बुलाहट को पूरा किया, उन लोगों का रैप्चर हो जाएगा ट्रिब्यूलेशन टाइम से पहले. फिर सात वर्ष तक महाकलेश का समय होगा, और जब महाकलेश का समय पूरा हो जाएगा तो यीशु मसीह वो संतों के साथ जिनको उसने उठा लिया था, उनके साथ यीशु मसीह बादलों पर आएगा, स्वर्गदूतों के साथ तुरी फूंकी जाएगी, और फिर यीशु मसीह जो है वो 1000 वर्ष तक अपने लोगों के साथ क्या करेगा? राज्य करेगा. हालेलुया. और 1000 वर्ष का शासनकाल पूरा होने के बाद शैतान को थोड़े समय के लिए छोड़ा जाएगा, और उसके बाद उसको हमेशा के लिए नर्क में डाल दिया जाएगा. फिर व्हाइट थ्रोन जजमेंट होगा, और व्हाइट थ्रोन जजमेंट होने के बाद फाइनली वो प्रायश्चित के दिन का पर्व मनाया जाएगा. कितने लोगों ने नाम सुना है प्रायश्चित के दिन का पर्व? प्रायश्चित के दिन का पर्व मनाया जाएगा जब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर बलिदान किया, और यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, तो मंदिर का पर्दा बीच में से दो भाग हो गया. उसका अर्थ यह था कि यीशु मसीह ने अब हर एक व्यक्ति के लिए अपने बलिदान के द्वारा वो मार्ग खोल दिया है कि जिस किसी ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया था, अब सब इटर्निटी को प्राप्त कर सकते हैं. हालेलुया. हालेलुया. बोलो प्रभु यीशु मसीह की. जब यीशु मसीह जीवित होकर आया, मरियम मगदलीनी उन्हें छूने लगी, तो प्रभु ने कहा अभी मुझे मत छू, अभी मुझे पिता के पास जाना है, क्योंकि महायाजक को अपना पवित्र लहू ले जाना था और उस सिंहासन पर छिड़कना था. हालेलुया. ताकि हर एक विश्वास करने के, हर एक विश्वास करने वाले के लिए अब उस इटर्निटी में जाने का रास्ता खुल जाए. हर एक पर्व का अर्थ है फसह का पर्व जो हर एक विश्वासी मना सकता है, आँख हमीरी रोटी का पर्व जो हर एक विश्वासी बना सकता है, कटनी का पर्व, पहली उपज का पर्व जो हर एक विश्वासी बना सकता है. हालेलुया. वो सारे पर्व, तुरी फूके जाने का पर्व जो अब होगा, तुरी फूकी जाएगी और यीशु मसीह आएगा. और फिर प्रायश्चित के दिन का पर्व होगा जब 1000 वर्ष का शासनकाल पूरा हो जाएगा, और शैतान को हमेशा के लिए, शैतान को, उसके दूतों को, व्हाइट थ्रोन जजमेंट के बाद शैतान को, उसके दूतों को, और जितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया वो सब जब नरक में चले जाएंगे, तो प्रायश्चित के दिन का पर्व मनाते हुए लोग उस झोपड़ी के पर्व में प्रवेश करेंगे, उस टैबरनेकल में प्रवेश करेंगे, प्रभु के तंबू में प्रवेश करेंगे, और फिर वो अनंत काल तक झोपड़ियों का पर्व मनाते रहेंगे. हालेलुया.
हालेलुया.
हर एक पर्व का अर्थ है, हर एक पर्व का मतलब है. हमें हर एक चीज को बारीकी से समझना है, और हर एक चीज को हमें जानना है. मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपने इन सब बातों को सुना है तो आज अपने मनों को कठोर मत कीजिएगा. हम हमेशा से यही सोचते हुए आ रहे हैं कि हमने विश्वास कर लिया हम स्वर्ग जाएंगे. ठीक है, जो भाग रहा प्रभु के लिए वो भी स्वर्ग ही जाएगा, जो नहीं भाग रहा वो भी स्वर्ग ही जाएगा. हाँ, जो 1 घंटा बाइबल पढ़ता है वो भी स्वर्ग ही जाएगा, जो 5 मिनट पढ़ता है वो भी स्वर्ग जाएगा. ऐसी थिंकिंग बनाकर हम लोग बैठे हुए हैं. ऐसी थिंकिंग मत बनाइए अपनी, क्योंकि न्याय एक बार नहीं बल्कि 7 बार होगा. और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो दोषी को कैसे भी निर्दोष नहीं ठहराता है. वो सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है. ना केवल अन्य जातियों का न्याय होगा, ना केवल इज़राइल का न्याय होगा, ना केवल स्वर्गदूतों का न्याय होगा, ना केवल विश्वास के द्वारा, जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया वो अनंत जीवन को पाएगा, लेकिन जिसने यीशु मसीह से प्रेम किया और विश्वास करने के बाद वो यीशु मसीह के प्रति वफादार रहा, अपने विश्वास के प्रति और अपनी बुलाहट के प्रति, वो ही 1000 वर्ष के शासनकाल को पा पाएगा. हालेलुया. आज हम अपने आप को जांचें, आज हम अपने आप को देखें कि क्या हम वास्तव में उस बड़े एक जो प्रिविलेज जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है, एक बहुत बड़ी आशीष 1000 वर्ष के शासन की जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है, विश्वासियों के लिए जो अपने विश्वास और अपनी बुलाहट के प्रति वफादार है, क्या हमने उस चीज को अपने जीवन में समझा है या नहीं समझा, यदि नहीं समझा तो आज हम समझें। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम पवित्र आत्मा से कहें, प्रभु तू मुझे जांच कर, जान ले कि मुझ में कोई बुरी चाल तो नहीं, अपने धर्म के मार्ग के निमित्त तू मेरी अगुवाई कर प्रभु। हालेलुया। प्रभु आज मैं अपने आप को पूरी तरह से तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सभी अपनी आंखों को बंद करें और हम कुछ समय जो वचन हमने सुना है उसके ऊपर मेडिटेट करें, उसके ऊपर मनन करें, क्योंकि प्रभु जो है वो सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है। विश्वास के द्वारा हमने अनंत जीवन को तो पा लिया है, परंतु क्या हम प्रभु से प्रेम करते हैं? प्रभु ने कहा प्रेम सबसे बड़ा है। क्या हम 1000 वर्ष तक, क्या हम वो शर्म का जीवन हम कल्पना भी कर सकते हैं? हम नहीं पाना चाहते उसको, तो आज से प्रभु के लिए भागना शुरू कर दें, आज से प्रभु के साथ वफादार रहना शुरू कर दें, आज से प्रभु को समय देना शुरू कर दें, आज से उसके वचन को समय देना शुरू कर दें, आज से प्रार्थना में समय देना शुरू कर दें, आज से संगति में समय देना शुरू कर दें प्रभु के लोगों के साथ, आज से प्रभु की मेज में निरंतर भाग लेना शुरू कर दें। हालेलुया। आज से हम उस आत्मा की भरपूरी को अपने जीवन में ले लें। हालेलुया। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां। आज प्रभु से कहिए, प्रभु मैं उस 1000 वर्ष के समय में तेरे साथ शासन करना चाहता हूं प्रभु, मैं उस सौभाग्य को नहीं खोना चाहता प्रभु। हालेलुया। प्रभु मैं उस उठाए जाने में भाग लेना चाहता हूं प्रभु, प्रभु मुझ पर दया कर प्रभु। हालेलुया। मेरी मदद कर पवित्र आत्मा। हालेलुया। अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करिए मेरे प्रियो, आज अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना कीजिए। हालेलुया प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु मैं अपनी बुलाहट को पूरा करना चाहता हूँ प्रभु, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाना चाहता हूँ, मैं उस महिमा के मुकुट को पाना चाहता हूँ प्रभु। प्रभु मैं तेरे मुंह से निकम्मा नहीं सुनना चाहता। अपने मुंह से बोलिए, प्रभु मैं तेरे मुंह से निकम्मा नहीं सुनना चाहता, मैं तेरे मुंह से विश्वास योग्य सुनना चाहता हूँ, मैं तेरे मुंह से विश्वास योग्य सुनना चाहता हूँ, मैं धन्य सुनना चाहता हूँ, मैं तेरे मुंह से धन्य सुनना चाहता, मैं तेरे मुंह से विश्वास करके दास सुनना चाहता हूँ प्रभु जी। ओ पवित्र आत्मा तुझ मेरा सहायक है, मेरी मदद कर। हालेलुया। प्रभु इन सब बातों को मैं और अच्छे से समझने वाला हो जाऊं प्रभु, इन सब बातों को मैं और अच्छे से जानने वाला बन जाऊं प्रभु। हालेलुया। ओ प्रभु मेरी मदद कर, मैं अपने समय को तुझे दूंगा, मेक अ कमिटमेंट विद गॉड। हालेलुया। आज के दिन प्रभु के साथ एक कमिटमेंट करें कि प्रभु मैं केवल हफ्ते में एक दिन प्रार्थना में समय नहीं दूंगा, मैं रोज प्रार्थना में समय दूंगा। आज वो कमिटमेंट करें कि प्रभु मैं हफ्ते में एक दिन ही प्रार्थना वचन को समय नहीं दूंगा, मैं रोज दूंगा प्रभु। हालेलुया। मैं रोज वचन को समय दूंगा, मैं रोज प्रार्थना में समय दूंगा प्रभु, मैं रोज प्रभु हालेलुया अपने आत्मिकता को परखूंगा प्रभु कि प्रभु मेरे अंदर कोई पिता परमेश्वर ऐसी चीज तो नहीं जो तेरे वचन के अनुसार नहीं है प्रभु। वो आंखों के अभिलाषा मैं नहीं करूंगा प्रभु, वो जीविका का घमंड हालेलुया, वो सारी बातें प्रभु हालेलुया वो मुझसे तू दूर कर चुका है प्रभु। जो पाप मेरे अंदर बसा हुआ था, जो मुझसे सारी चीजें कराता था, वो पाप तो तू ले चुका प्रभु हालेलुया। अब तूने मुझे पाप से और उसके स्वभाव से आजाद कर दिया है प्रभु। वो होने दे, मैं हर उस नकारात्मक विचार को उसका खंडन करूं प्रभु, उस चोर को चोरी करने ना दूं यीशु मसीह के नाम से। ओ हालेलुया। वो मेरा आनंद चुराने ना पाए प्रभु, वो मेरी आत्मिकता चुराने वाला ना हो। हालेलुया। ओ प्रभु तू मेरी मदद कर, मेरी मदद कर प्रभु राजा। आइए हम अपने हाथों को एक पल के लिए स्वर्ग की ओर उठाएंगे और एक कमिटमेंट प्रभु के साथ करेंगे। प्रभु आज से मैं तेरे लिए भागना शुरू करूंगा प्रभु, आज से मैं तेरे लिए भागना शुरू करूंगा, आज से मैं तुझको समय देना शुरू करूंगा, आज से मैं तेरे वचन को समय दूंगा, आज से मैं प्रार्थना में समय दूंगा प्रभु। ओ मुझे वो लज्जा का जीवन नहीं चाहिए, मुझे वो शर्म का जीवन नहीं चाहिए, मुझे निकम्मा नहीं सुनना, ओ मुझे पिता परमेश्वर महिमा का मुकुट चाहिए। हालेलुया। उस अनंत जीवन से पहले तूने जो 1000 वर्ष का शासन रखा है अपने न्याय को पूरा करने के लिए प्रभु, उस न्याय के समय में मैं तेरे साथ शासन करना चाहता हूँ, मैं स्वर्गदूतों का न्याय करना चाहता हूँ। ओ प्रभु ये सौभाग्य है मुझसे ना खोए। हालेलुया। और अबाद अबाद मा शिकार अबाद 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 अब
मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा
महान,
यीशु
आत्मा ने तोड़ा है, हम एक दूसरे को ना देखें, यदि आज पूरे समर्पण के साथ प्रभु के सम्मुख आना चाहते हैं और कहना चाहते हैं प्रभु मैं विश्वास के प्रति और विश्वास अब योग्यता करना चाहता हूं, प्रभु बुलाहट के प्रति विश्वास योग्य रहना चाहता हूं, तो अपने स्थान पर खड़े हो जाए। जिन्होंने केवल आज तक इस बात को नहीं समझा था लेकिन आज प्रभु के वचन से समझ लिया है, वो प्रभु के साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं, यदि आज शर्म कर गए तो फिर 1000 वर्ष तक शर्म का जीवन जिएंगे। आज शर्म मत कीजिए, यदि आज शर्म कर जाएंगे अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए और केवल परमेश्वर और आपके बीच की बात है ये, उसमें मेरा कोई रोल नहीं। अपने मुंह को खोलकर अपने परमेश्वर के साथ कमिटमेंट कीजिए, समर्पण कीजिए, प्रभु आज से मैं तेरे लिए भागना शुरू करूंगा, आज से मैं वफादारी का जीवन जीना शुरू करूंगा प्रभु।
मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करे मेरी जुबान, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करे मेरी जुबान, यीशु
चाहे प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्यारे पवित्र आत्मा जी, इस वक्त मैं आपसे निवेदन और प्रार्थना करता हूँ, तेरे लोगों को उनकी कमियां जाहिर कर, जो उनको उस महिमा के मुकुट से दूर कर रही हैं, उन कमियों को जाहिर कर मेरे पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम से प्यारे पवित्र आत्मा लोगों पर उनकी कमियों को जाहिर कर। उनका समय कहां चुरा रहे शैतान, उनकी कौन सी आदतें तेरे वचन के अनुसार नहीं है, आज हर एक कठोर मन का तोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। उनके समय को शैतान कहां छुड़ा रहा है, अपने मुंह से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। वाली अंधकार की शक्तियों में तुम्हें डांटता हूँ और दूर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मेरी आत्मिकता में मुझे मेरे प्रभु के साथ वफादार रहने से रोकने वाली बांधिए 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 हजार वर्ष के शासन को चुराने वाली अंधकार की शक्तियों तुम्हें डांटते हैं यीशु के नाम से। प्रभु के लोगों से दूर हो जाओ। हालेलुया बोलिए पिता यहोवा यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के लहू को लेकर मैं तेरे नजदीक हूँ। पवित्र आत्मा मैं तेरा मंदिर हूँ। वो मेरे अंदर है मेरा सहायक है प्रभु यीशु मसीह। तू मेरा महायाजक है यीशु के लहू से खरीदा हुआ हूँ। मैं नई सृष्टि हूँ। मेरे अंदर पाप नहीं है। मैं पापी नहीं हूँ। यीशु मसीह मेरे सारे पापों को क्रूस पर ले चुका है। मैं पापी नहीं हूँ। मैं धर्मी हूँ यीशु की धार्मिकता से यीशु के लहू से मैं खरीदा गया हूँ। मैं पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि जो पाप मेरे अंदर था वो यीशु मसीह ले चुका है। अब मैं यीशु की धार्मिकता हूँ। अब मैं यीशु की धार्मिकता हूँ। अब मैं यीशु की धार्मिकता हूँ। मैं केवल विश्वास करने वाला नहीं बनूंगा बल्कि मैं प्रभु तुझसे प्रेम करूंगा क्योंकि प्रेम सबसे बड़ा है। मैं तेरे आज्ञाओं को मानूंगा। मैं तेरे साथ राज्य करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो प्रभु ने जब अपनी सेवकाई को शुरू किया तो प्रभु ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ क्योंकि 1000 वर्ष का राज्य निकट आ गया है। उस संसार के अभिलाषाओं से मन फिरा लो। उस शरीर के अभिलाषाओं से मन फिरा लो। उस जीविका के घमंड से मन फिरा लो। प्रभु कहता है मन फिराओ क्योंकि राज्य करने का समय निकट आ गया है। मन फिराओ क्योंकि उठाए जाने का समय निकट आ गया है। क्योंकि दो लोग हल जोत रहे होंगे और एक उठा लिया जाएगा और एक रह जाएगा। तू वो विश्वासी न बनना जो रह जाए। तू वो विश्वासी न बनना जो रह जाए क्योंकि वो भी विश्वासी होगा जो उठाया जाएगा और वो भी विश्वासी ही होगा जो नहीं उठाया जाएगा। परंतु तू उठाए जाने वालों में शामिल होना मेरे बेटे मेरी बेटी क्योंकि मैंने तेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य रखा है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ राज्य करे। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इसीलिए तुम में से बहुत से रोगी और बहुत से निर्बल हैं और बहुत से सो भी गए। यदि तुम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते लेकिन प्रभु ताड़ ना देता ताकि तुम उन जगत के लोगों के साथ दोषी ना ठहरो। दोषी ना ठहरो। वो सच्चा न्याय करने वाला महान योजना बनाने वाला परमेश्वर। ओ हालेलुया तेरा धन्यवाद प्रभु। आइए जो प्रभु की मेज में भाग लेने जा रहे हैं जो हमने प्रभु के साथ कमिटमेंट किया प्रार्थना में जाए।